संभालना नहीं चाहता। तुलिन ऐसा अजब गजब का है, बहुत कीमती हीरा है। हीरे वालों को किसकी कीमत आती है? हीरे की आएगी ना। अच्छा, जिसने कीमत आंकी वो बेशकीमती नहीं है, है ना? जिसकी कीमत आंकी गई वो बेशकीमती है। डॉक्टर डोनल जी यही हो रहा है ना। तो उनके पीछे एक मित्र खड़ा था कि तुम मूर्ख हो। बोले क्यों? इज देयर समथिंग मोर प्रीशियस देन दिस डायमंड? इससे भी ज्यादा कोई बेशकीमती है क्या? बोले यस जेंटलमैन, इट इज योर आईज विदाउट विच ही कुड नॉट सी इट। वो महोदय आपकी आंखें हैं कि जिसके बिना आप देख करके बोल रहे हो? बोले आंखों से ज्ञान हुआ कि नहीं? आंखें बंद होती तो दिखाई देता तुम्हें कमल जी? नहीं दिखाई देता। तो हीरा कीमती की आंखें? बोलो नवलगुण जी, कौन आंखें कीमती है ना?
सबके बाद हीरा भी गई है।
अब पीछे हम खड़े थे, हमने कहा अरे आप तो आए नहीं थे, हमने कहा हम देख रहे थे, और हमने कहा तुम दोनों ही मूर्ख हो। तो दूसरा बोला मैं कैसे मूर्ख? इज देयर समथिंग मोर प्रीशियस देन आईज? आंखों से ज्यादा कोई बेशकीमती चीज है? मैंने जस्ट नाउ 1% हैड डाइड आउट ऑफ दिस म्यूजियम, और वो डोनेट कर गए आंखों को कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंखों का दान होने लगा ना, उसको लाके यहां खड़ा करो। और ऐसे कई लोग मर जाते हैं आंखें खुली रहती हैं, तो आंखें खुली है मैंने, उसको लाके खड़ा करो। वो हीरे की कीमत, हीरे को देख सकेगा कि नहीं? अरे कीमत आंक सकेगा कि नहीं? कि नहीं। तो आंखें देखती हैं कि नहीं? तो कौन देख रहा था? कौन कीमत आंक रहा था? कौन था? हवा थी, वो तो निकल गई, क्या पता क्या था। ये इस चक्कर में फंस जाता है। वो ज्ञान था, चश्मे से ज्ञान होता कि नहीं भाई साहब? नहीं होता, फिर क्यों लगाया? मोतियाबिंद हो जाता है डॉक्टर साहब, तो ऑपरेशन कराने के नहीं, कैटरेक्ट का मोतिया बिंद वो निकाल देते ना, क्या बोलते कैटरेक्ट, तो उससे जानना हो जाता है कि नहीं? तो ये जीव को क्योंकि इतना इंद्रिय ज्ञान इतना अभिता से पकड़ बैठा है कि बिना इंद्रियों से हमारा ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। ये इसके ज्ञान की इतनी कमजोर हीन अवस्था है, इसको पराधीन कहते मति श्रुति। इनके माध्यम से वो जानना प्रवर्तता है। तो फिर हमारे आचार्य कहते हैं अगर इंद्रियों से ज्ञान होता है और सुनने से ज्ञान के कान सुनते हैं, तो टीवी के ऊपर हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेक्चर दे रहा हो इंग्लिश में और मैं नहीं जानता और आप जानते हैं, और कोई अच्छी बात आ गई आप हंस दिए तालियां बजा दी, मेरी पोल ना खुल जाए तो मैं भी हंस देता हूं तालियां बजा देता हूं, और बाहर निकले तो रमेश जी पूछे क्या अच्छी बात की थी भाई साहब, तो मेरी पोल ना खुल जाए तो मैं कहता हाँ बहुत अच्छी बात, क्या कहा था एकदम से? नहीं तो कुछ ख्याल नहीं है सर। क्यों? शब्द तुमने भी सुने हमने सुने, ज्ञान उससे हो रहा था कि किससे हो रहा था? तो हमारे जैनाचार्यों ने कहा क्या स्वावरण छेदोत्सव लक्षण योग्यतया, और क्या है विषय प्रतिनियतार्थम व्यवस्थाप्यति, हर एक जीव का अंदर में है रेगुलेटर, ज्ञानवर्ण कर्म का, दर्शनवर्ण कर्म, वीर्यांतर कर्म का छेदोत्सव, कि उसके प्रमाण में वो खिड़की कितनी खुली है, कितनी विकसित है ज्ञान की उजाले की पावर, उस प्रमाण में वो जानना होगा गेयों का। अभी इधर से चल रहे हैं पर अतिंद्रिय पे पहुंचते हैं, ये इसका सार है कि सब वो ज्ञानावरण कर्म, वो पुद्गल की अवस्था छह उपशम, उसमें दो ही अवस्था होती है छह उपशम और छह उपसमाधि, नहीं होता नहीं तो जड़ हो जाएगी। तो उससे ये ज्ञान पर्याय हुई क्या कि नहीं? ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, इधर कांच की खिड़कियां आदि लगी हैं, तुम कम कर दो ज्यादा कर दो उजाला अंधेरा उसकी, तो वो एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू दैट होता है, उसके अनुपात में होते हैं से बिल्कुल ऐसा, कोई करण धरने की बात नहीं। यहां पर किसी ने किसी को कुछ किया दिया नहीं, उसका बंद होना कम होना ज्यादा होना उसी हिसाब से उसका, ये सब दृष्टांत एक देश होते हैं समझना, लेकिन ये केवली के द्वारा जाना गया ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध। तो इसे सिद्ध हुआ कि वो गेयों से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान आवरण कर्म का छह स्वभावी आगम की भाषा, और इधर का एक ज्ञान पर्याय का उघाड़ जितना है उस प्रमाण में वो गेय जानने में आते हैं। तो सिद्धांत सूत्र क्या बन गया कि गेयों से ज्ञान नहीं होता और इंद्रियों से भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? कि वो जो व्यक्ति मर गया था और आंखें दान कर गया था, डॉक्टर उसको निकाल करके किसी दूसरे अंधे को लगा देते हैं तो क्या होता है, उसको तो दिखाई ही पड़ने लगा। तो अगर आंख देखती थी तो उस मुर्दे की आंख को क्यों नहीं दिख रहा था? उसमें ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए मैंने कुछ बोल लिखे थे जो मैं इस बुकलेट में डालना चाहता था, लेकिन रजनी भाई का कहना था कि बिल्कुल 60 और 60 और 60। मैंने 14 पेज का 7 किया, 7 के बाद उन्होंने 3-4 पेज कर दिया, सूत्र लिख दो आप तो बोल देना। जैसे अवेजी के छपे ना नयों का पूरा, तो थोड़ा पढ़ने में मजा आता है। तो वैसा होता तो देखो मैंने क्या लिखा था, अभी टाइम तो नहीं है उतना, फिर भी मैं इसका सार जितने 20 बोल हैं उसका कहता हूं। कल एक भाई ने प्रश्न पूछा था वो भी बता देता हूं कि पहले जो है 5 वो नास्ती से है, 6वां अस्ति से है पूरा स्वभाव से, और फिर जो 7वें से 11वें तक है वो उपयोग का दुरुपयोग वाले लक्षण है, कि उपयोग ऐसा है वैसा है, बाहर से आता है पर से आता है, लेन देन होता है मलिन होता है आदि आदि, तो उसको निराकृत किया। एक ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं है बिल्कुल, बाला अवाल गोपाल जो कहा था। अरे यहाँ तो एक इंद्रिय से निगोध से लेकर के सिद्ध प्रभु तक उपयोग लक्षण का स्वयं पर प्रकाश कर तो स्वय सहाय आयतुक है, अल्पज्ञ का लक्ष्य प्रमाण उतना उसका एक समय में गे मुख होता है, वो अपेक्षा से वो जानता है एक है। तो देखो इसमें से ये बोल निकाले थे, कल आपको मैं सिर्फ पढ़ के सुनाता हूं, उसमें कोई भी चर्चा हो तो विचार करना। ज्ञान गेयों का नहीं, गेयों से नहीं, क्योंकि गेयों में नहीं। एक जो उन्होंने बहुत 60 में दृष्टांत दिए हैं। दूसरा, ज्ञान इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों में नहीं, और इसका मतलब हुआ कि अतीन्द्रिय। और तीसरा बोल, ज्ञान सुवासो राग का नहीं, अर्थात कषाय का नहीं, राग से कषाय से नहीं, क्योंकि राग कषाय में ज्ञान नहीं। चौथा कि ज्ञान प्रकाश का, ये जड़ प्रकाश उजाला, ये प्रकाश का भी नहीं, प्रकाश से नहीं, क्योंकि प्रकाश में ज्ञान नहीं। इसलिए परीक्षा मुख में दूसरे अध्याय में 6वां सूत्र दिया आचार्य ने, नार्था लोको कारणम परिच्छेदत्वा तमोवत्। पदार्थ और ये प्रकाश माने गेय और ये जड़ प्रकाश, ये तुम्हारे ज्ञान उत्पत्ति के बिल्कुल कारण नहीं है, ना थे ना है और ना होंगे। ये सब न्याय से पूरा कसा आचार्य ने। और उसके बाद इसे सिद्ध हुआ कि अब आखिर ये तो बताओ ज्ञान फिर किसका है? आत्मा का है ज्ञान, आत्मा से है, क्योंकि आत्मा में है। अरे आत्मा में है का मतलब आत्मा ज्ञानमय, वो तो उस टोन में बोलने में कि आत्मा में। और उसका अर्थ हुआ ज्ञान राग को जानता है, इंद्रियों को जानता है, सुनना भी राग को जानता है, इंद्रियों को जानता है, विषयों को जानता है, जड़ अंधकार उजाले को जानता है, तथापि उनसे नहीं होता। पहले नक्की करते जाओ क्रम से, फिर अभी अंधेरा है उजाला, हाँ किसने मैंने जाना, अब कैसे जाना, वो आगे बोल बढ़ते, उनसे नहीं हुआ और उनको ये जानता है, और वो आत्मा से ही होता है। अब आगे चलते हैं, इंद्रिय ज्ञान है क्योंकि वह गेय पक्ष में जाकर के नष्ट हो जाता है। गेय पक्ष माने ये गेय वो अनादि से ऐसा मैंने कहना चाहिए, जैसे कोई पाइप की कुलुप रूम में टोटी खोल देते हैं ना कि साहब पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा, और खुला छोड़ के चले गए, फिर वहां सुधारने वाले ने उसको ठीक कर दिया तो पानी आएगा कि नहीं? उसमें आया, अब देखा रूम में भर गया। ठीक इसी तरह जो हमारे आपके पास प्रकट ज्ञान पूंजी है, जैन न्याय कहता असली ताकत तुम्हारी ये तुम्हारे स्वभाव का अंश है, इसमें स्वभाव विभाव का निर्णय करने की सामर्थ्य मौजूद है। त्रिकाली ज्ञायक तो दर्शन देने के लिए सदाकाल अपनी वेदी पर बैठा है, ध्रुव अचल अनुपम है वो स्वभाव से। अगर तुम्हें वो स्वरूप स्थिति प्राप्त करना है तो दर्शनार्थी बनो, प्रदर्शन मत करो। निकला था आत्म दर्शन को, फंस गया प्रदर्शन में, निकला था आत्म सिद्धि को, फंस जाता है ख्याति लाभ प्रसिद्धि में, तो इसलिए उसको वो नहीं होता अनुभव। तो ये ज्ञान जो है वो गे पक्ष में जाके नष्ट हो जाता है। ये तो इंद्रिय ज्ञान की बात हुई। प्रजन सार में इसी तरह 53 नंबर की गाथा में बात आई है, वहां सुख अधिकार शुरू किया है, तो वहां पर छह छह बोल दिए इंद्रिय ज्ञान क्यों हे है और इंद्रिय सुख क्यों हे है। पहले तो पराधीन है और अनित्य है और क्रम से होता है और सप्रतिपक्ष है, विरोधी धर्म लिए रहता है। मेरा एक साथी अभी जीएम में अभी रिटायर हो गया होगा, पंकज भाई
जी।
उसने लाल अक्षर में एक लेटर लिखा जब मैं था सर्विस में और मेरे से दिखा है जैन साहब ठीक है मैंने बढ़िया है टाइप में दे दो। बोले क्यों, हमने तो बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा है। ये लाल पेन से लिख रहे हो तुम, डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हो, एक देना पड़ता है कॉपी टू सब। फिर मेरे को तो काला दिख रहा है, जहां आई टेस्ट करा, आई टेस्ट कराया तो कलर ब्लाइंडनेस का रोग निकला। हजारों लाखों में एक आध होता है लाल दिखेगा काला उसको। इसलिए सब प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान ऐसा हर एक में लगा लेना, अभी टाइम नहीं है, तो बहुत प्रिंसिपल सिद्ध होते हैं। मायोपी वगैरह होता है, ना जाने कितने कितने आई की डिसीजेज होती है सब, वो आई स्पेशलिस्ट जानते सब। और उसके बाद अब कहते हैं तो वो जो इंद्रिय सुख है, जिसको सुख संज्ञा मान रखी जीव ने, सुखाभास को, वो भोग पक्ष में जाके नष्ट हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान गे पक्ष में जाके नष्ट हो रहा है, टोटी खुली हुई है पांच इंद्रियों की और विश्व में वो उपयोग नष्ट हो रहा है। मैं इसको जानू, इस अखबार को जानू, फलाना क्या हुआ, वो क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ और तेरे अंदर क्या हुआ पता ही नहीं। एक सज्जन ने मेरे से कहा, हेमचंद जी तुम संडे का हाफ एन आवर का वो सीरियल जरूर देखा करे, बहुत शिक्षाप्रद है। मैंने कहा वो भी वीकली और हाफ एन आवर का? अरे यार ऐसा कोई सीरियल बता 24/7 का हो,
चैनल है।
हाँ वो चैनल ही बता रहे, 24 घंटे और सातों दिवस। तो वो तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा टीवी है, वो आपको नहीं दिखता, मैं एक भी सीरियल नहीं छोड़ता। सीरियल करते सीधा रियल। हमारे परिणामों की फिल्म चल रही है प्रति समय और मेरे ज्ञान पढ़ते पर 24 घंटे दिखाई दे रही है। तुम इस समय मेरे को क्रोध दौड़ रहा है कि मान माया लोक कसाय परिणाम, ये किसकी रील है? लेकिन मेरा ज्ञान पर्दा इनसे अप्रभावित बना हुआ, रील चली जा रही है, इंटरवल हो तो वो माने अरे पर्दा तो सफेद ही था, हमें तो लग रहा था आग लग गई, पानी बरस गया, फट गया होगा, जल गया होगा, तो कुछ नहीं हुआ। ये ज्ञान की ताकत कि वो अपने ज्ञायक को ऐसा निर्मल सिद्ध करता हुआ मौजूद है लक्षण, और लक्षण का लक्ष्य से कभी व्याघात नहीं होता कि लक्षण में कुछ हो और लक्ष्य में कुछ और हो। एक अमृत चंद्राचार्य ने वास्तव में अगर एक टीका ना लिखी होती, हम कुंद कुंद भगवान के गाथाओं पड़े अर्थ को बिल्कुल नहीं समझ सकते। गुरुदेव श्री कहते हैं वे तो सिमंदर नाथ के पास गए थे, लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव तो 1000 वर्ष बाद हुए, लेकिन पूर्व का संस्कार और अंदर का बल वो जैन नहीं थे। नवलगुण जी कौन थे? ठाकुर थे, अमरचंद ठकुरिना लिखा है ना भाई साहब, रमेश जी क्या राकेश जी, अमृत चंद्राचार्य, हमारे सारे तीर्थंकर छत्री थे। गुरुदेव श्री बोलते हैं ना वाणिया ने हाथ में आ भी गया। तो वो बताना है उन्होंने इतना मर्म निकाला। अब देखिए आगे, तो मैंने क्या कहा इंद्रिय ज्ञान, अब इसमें थोड़ा रुकता हूं। ज्ञान इंद्रियों का है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से, क्योंकि आत्मा में। फिर नाम क्यों हो रहा उसकी इंद्रिय ज्ञान? कि जो ज्ञान इतना पराधीनता लिए है अथवा इंद्रियों से ही बाहर के दृश्यों को देखता, दृष्टा नहीं दिखाई देता, और सारा लोक व्यवहार इंद्रिय ज्ञान से चल रहा है। ये मेरे माता पिता है, ये पुत्र आदि है, सब कौन मानता है? इंद्रिय ज्ञान से चलता ना। अकलंक देव स्वामी को न्याय में बौद्धों से डिस्कशन में इसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इस सिद्ध करके मानना पड़ा, नहीं तो ये सही भाग जाएंगे। मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, फिर यही बाबू भाई है, यही डॉक्टर दौंडल है, नहीं वही थी, तो फिर गलत सिद्ध हो जाएगा। तो क्या कहा, व्यवहार में ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तो सूत्र दे दिया, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम साम देशना, क्या तद इंद्रियान निमित्तम देशना साम व्यवहारिकम, ये एक देश प्रत्यक्ष गिने जाते हैं कि यही पंकज भाई है और इसको अपने आचरण का प्रत्यक्ष की परिभाषा दी। ये नहीं कहा कि बिना इंद्री मन के जाने उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। सुनना जरा ध्यान से न्याय, जिसमें जानने में जो जाना गया विषय उसमें रंच मात्र प्लस माइनस हीना दिखता नहीं हो, संशय नहीं हो, विपरीतता नहीं हो और अनध्यवसाय नहीं हो, इसको अपने आचार्य ने कहा सम्यक ज्ञान। रत्नगण सुराकाचार्य समंत वदाचार्य देव ने सम्यक ज्ञान के चार श्लोक लिखे, उसमें पहले ही लिखा है अन्यून मन अतिरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीतता। जो आपने जाना, अभी एक जनरल परिभाषा सम्यक ज्ञान की, ना वो न्यून हो ना अधिक हो और ना विपरीत हो, तो लोक में तो ये इसको सत्य माना जाता है। और यहां स्वरूप के लिए कि मेरा स्वरूप कैसा है, अगर अपना ये श्रुत ज्ञान अपने ज्ञायक को अपना ज्ञेय बनाए, स्वयं ज्ञेय मैं हूं, अब शब्दों में बनाए क्या, वो तो है ही उसमें, लेकिन सोन मुक्ता का पुरुषार्थ भी कहने में आता है, तो ये हो तो उसको अपना स्वरूप माने कौन क्षणिक पर्यारूप बदल करके उसका क्या स्वर निकलेगा, ओ मैं तो एक रूप अनादि अनंत ज्ञान और आनंद का बना हुआ घन पिंड। जो आत्मा ज्ञानमय है स्वभाव से, अनक्रिएटेड है, अकृत्रिम है, हम पूजन करते सवेरे अकृत्रिम भगवान और कृत्रिम जिन बिंब नहीं है क्या, लेकिन हमारे अंदर कृत्रिमता भरी है, अकृत्रिम को समझने के लिए हम उन जिन बिंबों का आश्रय लेकर के अपने अकृत्रिम स्वभाव को देखते हैं, तो हमें इसलिए अपने स्वरूप की उपलब्धि में वो निमित्त होती। तो जिसको जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्ता उसको इंद्रिय ज्ञान नाम दे दिया, जो इंद्रियों के माध्यम से थोड़ा सुखावास अच्छा लगता है उसको इंद्रिय सुख कह दिया। तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय ज्ञान बाह्य गे पक्षों में जाके नष्ट हो जाता है और इंद्रिय सुख भोगों में जाके नष्ट हो जाता है बाह्य में। और एक नीति शास्त्र का भी श्लोक है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे ना ध्रुव के बारे में, यो ध्रुवाणी परित्यज्य और ध्रुवम प्रति सेवते ध्रुवाणी तस नश्यंती और ध्रुवम स्वयमेव, लौकिक नीति का जो ध्रुव शाश्वत को छोड़ करके अध्रुव के पीछे दौड़ते हैं उनका ध्रुव गायब हो जाता है, उसकी भाषा में नष्ट हो जाता है। जब गुरुदेव कभी कहते ना आत्मा ने मारी नाखा, मारी नाखा आत्मा ने आता ना कितने बार मारी नाखा, इसलिए उसको कभी नहीं मिलने वाला किधर आत्मा और कैसा आत्मा, क्योंकि वो अध्रुव के पीछे भाग रहा। तो इस तरह की बातें तो उसका ऊर्ध्वता लाते हैं, वो कैसे लाए तो कुछ और बोल है इसमें, आत्मानुभव करने के लिए एक और बोल है, गेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता ये नक्की हुआ, ज्ञान के उघाड़ के अनुसार गे जानने में आते रहते, ज्ञान के उघाड़ के अनुसार गे जानने में आते रहते, और वो गे दो हैं स्वय और पर और युग पर। और जो कहता है कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है, तो आचार्य न्याय में कहते हैं वो तीन काल में वो अंधा व्यक्ति होगा। दीपक से शिक्षा ले लो, दीपक पर प्रकाशकता लिए है कि स्वय प्रकाशकता, तो साहब यहां दे रहा था एक दीपक प्रज्वलित किया तो ये सब फोटा और सब आदमी सब दिखने लग गए, तो साहब दीपक की ड्यूटी हो गई कि पर को प्रकाशित करना हो गई ना, दीपक किस लिए है। तो जैन न्याय कहता है अच्छा ठीक है तुमने ये बात तो स्वीकार कर ली, दीपक ने पर को प्रकाशित कर दिया, और दीपक को कौन प्रकाशित करे, ये बैठा है दीपक, एक दूसरा दीपक ला, क्योंकि उसने तो और को प्रकाशित किया, उस दीपक को कौन प्रकाशित करेगा, दूसरा दीपक करेगा। और वो दूसरे को कौन करेगा? तीसरा अनवस्थल। तो वो चुप हो गया। 36 गाथा प्रवचन सार में आए तो प्रभु मुझे स्वयं पर ज्ञायकता में कोई तकलीफ नहीं, स्वयं ज्ञायकता के होने में मुझे शंक खड़ी होती है कि मैं को कैसे जान सकता हूं, क्योंकि ये सब जानने में आ रहे मैं कहां दिखाई पड़ रहा हूं। तो अनादि से जो टेव पड़ी इंद्रिय ज्ञान की, उसको जब तक आप अबाउट टर्न नहीं करोगे कि ज्ञान प्रकाश आखिर आ किस में से रहा, तब तक आपको इन भूलों का मर्म और आनंद नहीं उछलेगा। तो आगे आचार्य कहते हैं आत्मानुभव करने के लिए अवधि ज्ञान मनोपरय ज्ञान दोनों ज्ञान इंद्रिय ज्ञान मत हे है। कहां लिखा है? समय सार में देख लो 390 से 404 गाथा में या 414 गाथा के अंदर जैसन आचार्य ने पूर्णतः खुलासा कर दिया दो प्रकार से कि जीव के असाधारण पांच भाव हैं। जीव के असाधारण पांच भाव चलते हैं ना, सूत्र बोलते हैं औष्मिक छायक भाव मिश्र से जीव से स्वतत्व मौधिक परिणाम को। वो 320 गाथा में आचार्य ने एक बात कही महत्वपूर्ण जैसन आचार्य ने कि औधिक भाव तो एकांत बंध के कारण, औष्मिक उसमें छायक भाव मोक्ष के कारण सुनना, और पारिणामिक भाव नीदर नॉर चेतन भाई, न बंध का कारण न मोक्ष का कारण पंकज भाई। तो क्यों इतने गीत गा रहा तुम उसके, किसके? पंचम पाणिक भाव ना, वो मोक्ष का कारण ना बंध का कारण। कि भैया बाकी जितने में तो बंध कारण है, एक ये बचा है जो बंध का कारण नहीं है। लॉजिक से समझे थे तू, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान का ध्येय बन जाता है और वो स्थिर चीज है। और तुम जिन किसी को अन्य को ध्याओगे लक्ष्यगत करोगे वे कभी ध्रुव टिकने वाले हैं ही नहीं, सब विनश्वर है। अरे ये शुद्धोपयोग ध्यान पर्याय विनश्वर है ये लिखा है उसके अंदर, लेकिन तुम्हारा ध्रुवधाम कौन? पंचम भाव अविनश्वर है, वो ध्येय है, ध्येय अविनश्वर है। और चार भावों के अगोचर है वो शुद्ध अंतर तत्व है, ये बाकी सब वही तत्व है मोक्षादि सब। अरे औधिक भावों की जो बात ही किधर? ये सूक्ष्म बात हम आपने जो गुरुदेव से सुनी अपन विचार करते हैं तो अभी कहा था ना ज्ञान जे जे योग छे। अरे अभी इसको ही परम योग समझो, यही समझ के बाहर पड़ा रह गया, बाकी सब समझा। हूं कौन छू, क्या थी हूं, सुन स्वरूप छे मालूम करूं, कोणा संबंधी वलगणा छे राखूं के परी। पंकज भाई आप बेल्जियम तो बहुत जाते होंगे हीरा हीरा खरीदने ना, जितने बेल्जियम दौड़ते हैं आप, वो बिना तरासे हीरा होता है वहां, और आपके सूरत में या बंबई में आप तरासते हो, तरासवाते और कीमत आप बिना तरासे हीरे की उसकी कीमत कैसे आप लगाते हो कि इसमें ये बहुत पानीदार है, क्या बोलते है? पानीदार बोलते ना, बोलते कि नहीं? हीरे में पानी होता है मटानी जी, माल ये हीरा बहुत पानीदार, ये बोलते हैं। हमने बोले ये क्या बोल रहे, हीरा पानी है, पानी भरा है। अच्छा अब आप उसको परखते हो जब, तो दोनों आंखों से देखते हो कि एक आंख से? एक आंख से देखते हो, और एक आंख को क्या करते हो, कितना बंद करते हो? पूरा नहीं, थोड़ा खुला रखो ना, नहीं फोड़ तो नहीं लेते, फोड़ना भी नहीं, तो बंद किया पूरा, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखते, और उसमें आपको उसको पानी दिख जाता है, कितना पानीदार हीरा है। पानी का मतलब मत समझे, उसकी चमक। पर आपने उसकी कीमत आकी, एक कीमत आंकने वाला जिस क्षण निज कारण परमात्मा की कीमत आंक लेगा उसी क्षण उसने सिद्धत की स्थापना कर ली, आत्मानुभूति को प्राप्त हो जाएगा। सारे जगत की कीमत आंक आंक के मर गया, अनंत बार द्रवलिंगी हुआ। सोचो तुमने कौन सी कसर कोर कसर रखी थी, ग्यारह नौपुर के पाठी हो गए तुम, ये ज्ञान के छह उसम में अथवा बाहर की क्रियाचरण में तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं था, ना है और ना बनने वाला काम। तो साहब ये तो होते हैं, अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं, होते हैं, लेकिन तेरे को इनसे कुछ भी हानि लाभ नहीं। लाभ क्यों कहा जाता है पहले बता चुका मैं। गरीब किसान खेत में गेहूं बोता है, अमीर बोता है, और उससे महामीर बोता है, गरीब किसान का बीज अच्छा है, खेत अच्छा है, साफ किया है, और जब चाय नहीं बोता है, गेहूं कब बोया जाता है आषाढ़ में? नहीं, उस समय बोए तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा बीज भी, उसका भी पीरियड उस उसमें वो पकेगा, उस समय धान बोई जाएगी पानी के कल हेलमन, हर एक का हर एक की योग्यता ये सिद्ध कर रही कि नहीं कर रही? नहीं, हम तो साहब आधुनिक उससे कर लेंगे कुछ नहीं होगा। हर एक की योग्यता कब विकसित होती है, कैसे होती है, कितना टाइम फैक्टर है, दैट एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो ये बात जब उसके समझ में आई, उसने अब कमजोर है, पैसा नहीं है, तो कटीली झाड़ियां काट के उसके चारों तरफ रख दी। तो ये क्यों रखता है? और अमीर है तो बार्ड वायर की फेंसिंग कर दी खंभे गाड़ के, और बड़ा धनी है तो ऐसी दीवारें खड़ी कर दी और दरवाजे लगा दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फसल ज्यादा पैदा किसकी होगी? कौन? सुरेश जी नागपुर, किसकी फसल ज्यादा पैदा होने वाली है? गरीब की कि अमीर की? या जितने बागड़ बाहर की बहुत मजबूत लगाई, किसकी होगी? कमल जी बोलो। अरे ज्यादा गेहूं किसका पैदा होगा? भाई हमने तो व्यवस्थित बता दिया ना, आप तो ये बताओ, जिसने कटीली झाड़ी की फेंसिंग की उसका गेहूं ज्यादा पैदा होगा, या जिसने वार्ड वायर की फेंसिंग की उसका ज्यादा होगा, या जिसने 1,00,000 खर्च करके परमानेंट दीवार बना दी उसका ज्यादा होगा? फेंसिंग हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। बागड़ को कुछ भी लेना देना नहीं है तुम्हारी फसल से, तुम्हारा बीज अच्छा अच्छा होना चाहिए, उसके अनुकूल मिट्टी मुलायम हो, पानी हो, प्रकाश हो, बस उसके ये अनुकूल सहचारी। लेकिन क्यों लगाते हैं? विषय चोर बहु फिरत, नहीं आया समझ? विषय चोर कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? बार बार घूमते हैं, कहां कहां बाहर घूमते हैं? अभाव इसमें अनादि से जो टेव पड़ी है, क्या टेव पड़ी है? देखो अभी मैं क्रमबद्ध की भी बात बता देता हूं, अभी है 2 मिनट। अब क्रम नियमित क्या था कि अपने को आज गुरुदेव श्री का टेप सुनने को नहीं मिला, वो नहीं मिलना था तो नहीं मिला, या मोटानी जी ने ठीक नहीं रखा इंस्ट्रूमेंट, इन नए अमृत ने भाई ने इस कारण से नहीं मिला। अच्छा अभी बिगड़ना था उसको, आप तत्काल क्यों नहीं सुधार सके? डॉक्टर साहब का पहले हो गया, फिर मेरा हो गया, फिर घोषणा हो गई राकेश जी की, फिर बदल गई अभय जी की,
क्रमबद्ध वाले है ना,
क्रमबद्ध वाले है ना। सुनो, इस जीव को क्या टेव पड़ी है? काम बन गया तो हूं करूं छू, अने बगड़ी गया तो तीन जवाब देता रहता। मैं तो जितना अपना अल्पसेव समझे सोचता हूं कि मेरा कोई काम पेंडिंग है बंबई में ऑफिस में सरकारी, मोटराणी जी वहां रहते हैं, पंकज जी, निवेदन कर करके थक गया, भाई साहब जरा फाइल करवा देना क्लियर कुछ, वो ऑटोमेटिक हो गया, काम होके मेरे पास आ गया, मैंने पंकज भाई को बधाइयां दी, देने बधाइयां, तो ये बोले अरे भाई साहब मैंने कितने उस ऑफिस के चक्कर लगाए, चप्पलें घिस गई, तब आपका काम हुआ है भाई साहब। क्योंकि काम बन गया तो उसका श्रेय लेने के लिए सब बैठे, अने बिगड़ी गया तो भाई साहब आप तो विद्वान है, आप तो समझते हैं, भगवान को यही मंजूर था। अब तुम्हारा असाता कर्म ने उदय चाले चे, हूं शू करूं? इनको कर्म दिख गया उदय में, मेरा अपना नहीं, और अपन तो गुरुदेव के शिष्य हैं, क्रमबद्ध में यही होना था। तो अगर वो अपने आप हो गया तो अक्रमबद्ध हुआ, और नहीं हुआ तो क्रमबद्ध याद आया। ये जीव की टेव पड़ी है नदी से, इसको बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं खीर में शामिल महीरी में न्यारे। एक मठा की भी खीर बनती है मही छांस की, ख्याल में ना, बीमार आदि को दी जाती, और जहां दूध की और अच्छे मेवा डाल के बनी तो बिल्कुल तैयार है। और महीर यहाँ आई मही की, तो प्रवीण जी मेरा भैया काम बन गया तो हूँ करो छो, अने बगड़ी गया तो भगवान करे छे, कर्म का उदय करे छे, अने क्रमबद्ध में ये स्थवाना छे। मजबूरी का नाम अभी वो बोल तो जितने रहेगा तो रहे जिनवाणी से नहीं, अभी तो सॉरी अभी तो बोल नहीं, हो गया ना टाइम, हो गया ना टाइम, हो गया भैया।